मेरे दोस्तों, बुजुर्गो, मेरी माँ बहनों और बच्चों, हकीकत यह है कि मैं किसी तफसीली गुफ्तगू के न मूड में हूँ न मेरी हाल। कितना थका हुआ हूँ वो नहीं जानता। मुसलसल मक्का मुकरमा से सफर करते हुए रात को कोई नहीं पहुंचा। एक निकाह में शिरकत करनी थी, सीधे एयरपोर्ट से मैं शादी हाल में पहुंचा। बाद में बारात नहीं आई। इंतजार करते करते रात के 12 बजे बैठना मुश्किल। मैंने कहा घर पूरा गया तो मुझे नाश्ता भी शादी हारी की बेचारा ऐसा बेहाल हो रहा है। पैर खुदा खुदा करके वो तकलीफ जाए। मैंने कहा शादी साहब कहा पढ़ी आधा घंटा उसमें मिला, फिर इजाजत लेने में गया। थका थकाया आदमी है, मुझे थोड़ा सा बयान कर सोने पर सुना। मरता क्या नहीं करता बयान किया। असर ये है कि ढाई दूर जगह मैं क्या कहा। फिर लोग आ गए, मैंने कहा माफ कीजिएगा, अब मैं किसी को बरकत बांटने के लिए तैयार हूँ, मुसाफर करो और चले जाओ। पूरी देर सोया, फिर फजर के लिए उठा। उसके बाद सवाल ही नहीं पैदा होता वहां से मैं चला, मैं कभी ये अपनी विवादें हम कभी नहीं बयान किया होगा ना, आज पहले दिन बयान कर। वहां से जोहर की नमाज पढ़ करके मैं आपने गाड़ी भेजा था, चला 5 बजे यहाँ पहुंचा। 5 बजे पहुंचा, मुझे 5 मिनट भी, सही कह रहा हूँ, 2 मिनट या 3 मिनट बैठे हुए पैदल और ये ऐसा जगह है, मैं तो कांप गया यार। मैंने सनत गाय हो गया, कसरत करनी पड़ी, मैंने बैठ गया कितनी लाए, कितनी लगाए करती 47। खैर चला मिनिस्टर की तरह सिग्नेचर करते 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 तो 47 चिल्ले से नहीं टूटा, 40 दिन तक चिल्ला होता है, 7 दिन ऊपर कर दिया। उससे फुर्सत आया, वजू किया, इस्तिंजा किया, वजू किया, नमाज पढ़ी और फिर मेरे घर चल गए, उसके घर चल गए। चलो भाई ताजिया है घुमा, ताजिया फिर घर घुमाते हैं। हाँ अभी तक मैंने एक सेकंड जिसको बोलते हैं हकीकत, अब मेरा हाल क्या होगा। फिर भी आपकी मुहब्बत है कि लाकर खुशी पर बिठा दिया, ताजिया आखिर में आके बैठते ही बैठा है। अब मैं क्या बोलूं, वो मन आनंद की मन दानंद, थोड़ी देर अगर आप फ्रेश मूड में रहे सुनने की हालत में है तो इंशाअल्लाह सिर्फ चंद बातें मैं समझूंगा। जहां सबक पढ़ाया जाता है, कुरान हदीस किताब, उसको हमारी जबान में कहते हैं मदरसा। मदरसा कहते हैं, अब वो जामिया हो गया है, दारुल उलूम हो गया है, असल है वो मदरसा। उस जगह को कहते हैं जहां खेत काट करके अनाज जमा किया जाता है और फिर उस अनाज को भूसे से अलग करके इस्तेमाल के लायक बनाया जाता है। उसको उर्दू में कहते हैं गाहना और हमारी पूर्वी जुबान में कहते हैं दमरी करना और कहीं कहते हैं खल्ले में लाना। क्या क्या कहते हैं पता नहीं, समझ गए। वो पूरा खेत काट के लाकर पहले सुखाया जाता है और पुराने जमाने में 4-5 बैलों के गर्दन में रस्सी डाल करके उसको दिन भर घुमाते थे। वो अपने पांव से उसको रोत रोत करके उसका भूसा अलग कर देते थे, अनाज अलग कर देते, फिर उसको एक बर्तन में लेकर के किस रुख की हवा होती थी उसको यूं करते थे तो भूसा अलग हो जाता था, अनाज अलग, फिर वो बोरी में भरा जाता था, चक्की पर लाया जाता था, पीसा जाता था, रोटी बनाई जाती थी जब खाने के बाद, है ना। अनाज अल्लाह ताला ने आपके खाने के लिए बनाया है, खेत में पैदा हुआ भूसे के साथ पैदा हुआ। क्या ऐ नासिक वालों, कोई आदमी जाए और खेत में जैसे भैंस और गाय चरती वैसी अनाज खाए तो आप उसको क्या कहेंगे? पागल कहेंगे ना। जैसे कि जानवर चरता है खेती, वैसे ही अगर आप जाकर खेती चलें तो वो कोई बोलेगा क्या करना है, बोले ये मेरे भी चल जाकर पैदा किया, गेहूं है खा रहा। अरे खाने का ढंग तो सी सलीके से खा तो ये अनाज से विटामिन भी मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा और उसमें जितने कैल्शियम है उसके अंदर विटामिन बी कम्प्लेक्स है, विटामिन डी है, सू है, क्या क्या वो डॉक्टर हमारे डॉक्टर साहब कहेंगे, हम तो आफ्टर भी नहीं है डॉक्टर भी नहीं, पर उसमें जितने विटामिन प्रोटीन वगैरह होते हैं वो ढंग से खाओगे तो आपके बदन को वो ताकत देगा, आपके बदन में अच्छा खून पैदा करेगा, ब्लड के अंदर व्हाइट सेल्स और रेड सेल्स पैदा करेगा, ब्रेन में जाएगा तो इसमें केचिंग पावर को स्ट्रांग करेगा, आपकी सोच समझ कर को अच्छा बनाएगा, बहरहाल पूरे बॉडी को वो तमाना चाको चौबंद है। कौन सा अनाज? जो ढंग और सलीके से खाया जाए और जाकर के वैसे ही उसके पौधे को उखाड़ उखाड़ करके जानवर जैसे खाओ तो आप सेहतमंद नहीं होते, बीमार बन जाओ। गल्ले को पहले गाहा जाता है और फिर उसे पीसा जाता है, पकाया जाता है तो खाने के काबिल होता है। मदरसा इसको क्यों कहते हैं? क्या यहाँ पर धान और गेहूं की खेती लाके रखी जाती है? मदरसा तो उसको कहते हैं जहाँ अनाज गाहा जाता है, साफ सुथरा किया जाता है, भूसे को अलग किया जाता है, इसको मदरसा क्यों कहते हैं? ये मदरसा मदरसा क्यों है? अल्लाह ने अनाज पैदा किया है आपके फायदे के लिए, इसी तरह कुरान उतारा है आपके फायदे के लिए। अनाज को वैसे ही खाओगे तो फायदा नहीं होगा, और ठीक ढंग से खाओगे तो अच्छी तवानाई एनर्जी पैदा होगी। कुरान को अल्लाह ने उतारा है तो वैसे ही खाली पढ़ने के लिए नहीं, ठीक ढंग से पढ़ो, उसको गाहो और उसको पीसो, फिर वो खाओगे तो मर्तबा और तरक्की हासिल होगी। मेरे कौसे आजम पीराने पीर पीरे दस्तगीर महबूब सुबहानी शहबाज ला मकानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इस मसले को बड़े अच्छे अंदाज से फरमाते हैं, दरस तो इल्म हताशिर तो कुर्बान, दरस तो इल्म हताशिर तो कुर्बान, فنل تو سادا من مولا المبالين، فرماتے ہیں میں نے علم کو خوب گاہا، علم کو پیسا، خوب پیستا رہا، گاہتا رہا، اس کو چھان بین کرتا رہا، حتی سر تو کتبا، یہاں تک کہ میں تو کتب بن گیا، جاہی کتب نہیں بنتا، سب چشتیوں کو قادریوں کو غوث اعظم پیغام دے رہے ہیں، علم پڑھو، گاہو، پیسو، اس کو سمجھو، جو تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے سمجھو، مجھے دیکھو، میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا تو حافظ قرآن بن کے آ جاؤ، 17 پارا میں نے یاد کر لیا تھا، لیکن دنیا میں آنے کے بعد میں نے خوب علم کو پیسا، خوب حاصل کیا، یہاں تک کہ بزرگ بن گیا۔ بزرگ کس کو کہتے ہیں؟ یہ پھوٹی ہے چکی میں، بیچ میں ایک پھوٹی ہوتی، اس کو کہتے ہیں بزرگ۔ چکی چلتی ہے اور اناج اس میں پیسا جاتا ہے، تو پھوٹی اپنی جگہ پر رہتی ہے، چکی چلتی ہے اور اناج جب اس میں جاتا ہے تو وہ پس کر آٹا بن کر غذا کے لائق ہو جاتا ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے علم کو خوب پیسا ہے، یہاں تک کہ میں کتب ہو گیا، کیا سمجھے میں دیش کی پھوٹی بن گیا، پھوٹی بن گیا، اب جتنے اناج ہیں میرے ہی ارد گرد گھوم رہے ہیں، मैं पीसा हूँ पीसा, लेकिन पीसते पीसते रब ने ऐसा मर्तबा दे दिया मैं कुतुब बन गया। अब सारे इल्म वाले पीर फकीर सब मेरे इर्द गिर्द ढूंढते हैं, जैसे कि खूंटी के इर्द गिर्द अनाज ढूंढते हैं, और अनाज जो ढूंढता है वही खाने के लायक बनता है, और जो अपने डब्बे में भरा रहता है खाने के लायक नहीं होता है, खा लोगे तो पेट में दर्द होने लगेगा। फरमाते हैं अब सब मेरे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, और जो मेरे इर्द गिर्द मेरी सुन्नत पर चलते हैं वही कौम के लिए मुफीद साबित होते हैं। ये मदरसा इसको इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर इल्म में जो ना समझी समझ करके, और तुम उसको समझते हो इसका ये मतलब वो मतलब ये मतलब, ये है उसका भूसा, भूसे को अलग ये लोग करवा। आज एक साहब आए बोले आला हजरत ने फरमाया है दूर नजदीक के सुनने वाले वो काम काले लाले करामत पे लाखों सलाम। बोले एक साहब ने एतराज किया कि नबी के पास जो खिलाफ आदत काम होता है उसे मौजजा कहते हैं, और मौलाना अहमद रजा ने उसको करामत कहते हैं। करामत वली से होती है, मौजजा नबी से होती है। मैंने अपने सर को देखा, मैंने अंदाज कैसे शायर हो और कैसे इल्म वाले हैं, लाले करामत का तर्जुमा भी नहीं समझे और काम का भी तर्जुमा नहीं समझे। मुख्तसर बता रहा हूँ, लाले करामत, लाल जो होता है ये खदान में निकलता है, जिसको उर्दू में कान कहते हैं। एक कान ये है, एक कान वो है जहाँ से लाल और मोती निकलते थे। आला हज़रत फरमाते हैं दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, यहाँ तो कान से मुराद ये कान है जो दूर नजदीक का सुनने वाला जो उस मुबारक है उसे कान कहते हैं। अब फरमाते हैं काले लाले करामत पे लाखों सलाम, बुजुर्गी के मोती वो करामत नहीं है। यहाँ करामत के माने मुफ्ती साहब बुजुर्गी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम जो है बुजुर्ग और मुकद्दस मोतियों की खदान है। ये फरमाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम काले लाले करामत है। मतलब ये है कि बुजुर्गी के मोती यहाँ से मिलते हैं, जो मुस्तफा की अजमत से मुतअल्लिक हो गया उसके अंदर ये करामत पैदा हो जाती है कि वो दूर नजदीक का खुद की आवाज को सुनने लगता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खदान से ऐसे मोती निकलते हैं जो इसे चुन लेता है वो करामत वाला। ये भूसा का अलग होगा, आला हजरत का कलाम नहीं समझ पाता तो रब्बुल आलमीन का कलाम कैसे समझेगा। इसलिए मदरसे में आने की जरूरत है, वैसे मत खाओ हिदायत बख्शीश, वैसे मत पढ़ो गुमराह हो जाओगे। और दूसरा शेर पढ़ा के उंगलियां हैं फैज पर, क्या है पर नूर के चश्मे लहराए दरिया बने, उंगलियों की करामत पे लागू सके। ये करामत नहीं है जो वलियों की है, उंगलियों की बुजुर्गी पर लाखों सलाम। इतनी बुजुर्ग उंगली है कि इसकी बुजुर्गी और अजमत को हम सलाम अर्ज करते हैं। हुजूर से जो काम हुआ तो एक एक उसे मेरे हुजूर का बुजुर्ग है, अजमत वाला है, आप बुजुर्ग है,
कान बुजुर्ग है, उंगलियां बुजुर्ग है, अरे रोवा रोवा बुजुर्ग है, इसलिए कि हर कुछ मेरे नबी का शान इलाही है। उसको दूसरी जगह आला हजरत ने क्यों पेश किया है कि अल्लाह की सरता बकदम शान है, अल्लाह की सर ताबा कदम शान है, इंसान नहीं, इंसान वो इंसान ये है, ये हुजूर का रोवा रोवा बुजुर्ग है, पलक पलक बुजुर्ग है, हुजूर की एक एक अदा बुजुर्ग है, करामत के मालिक बुजुर्गी के हैं, वो इस्तेलाही करामत नहीं है, ये शायराना करामत है, अदब की करामत है, जबान की करामत है, जो करामत का लुगवी माना समझेगा वही शेर को समझेगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगलियां उठाते हैं तो देखो इस उंगलियों की अजमत और करामत की चाँद तो टुकड़े हो जाता है, हाथ की बुजुर्गी देखो चाँद को तो माँ उंगलियों ने चीरा था, हाथ में सूरज को पड़ता, पत्थर की बुजुर्गी पैर की बुजुर्गी पत्थर पर रखे तो सीना नर्म होता है, हुजूर के पंजे की उसके का निशान बन जाए, एक एक उज्व अल्लाह ने बुजुर्ग बरकर बनाया है, ये आला हजरत इरशाद फरमा रहे हैं। जब उर्दू कलाम को लोग नहीं समझ पाते, एक साहब एक पत्र मेरे पास आए, बोले हजरत हीगल देते माने, मैंने आज तक न किसी उस्ताद से सुना न किसी शेर में पढ़ा, हीरंग क्या है? मैंने कहा कि आपने कहाँ पढ़ा है? बोले हिदायत बख्शिश नहीं, अदालत हीरंग में कहा सकते, मैंने जरा शेर तो पढ़ लो, तो बड़े झूम करके शान से पढ़ते हैं, उनके अनुसार कोई कैसे हीरंग में हो। हमने सर नहीं खोलू तो क्या, मैंने कहा कि हीरा बख्शिश है तुम्हारे पास, तो बोले हाँ मैंने कहा। अब मैंने कहा देख ही अलग है रंज अलग, तूने ही को रंज के साथ दिया। बोले मैंने इस पर गौर नहीं किया, लोग पढ़ते हैं उनके मिसाल को ही कैसे हिरंज में हो, तो मैंने कहा हिरंज और भाग बकरी नहीं है, रंग अलग है और ही अलग है, मतलब है कि हुजूर के जो आशिक हैं वो कैसे ही रंजो गम में होते हैं, जब हुजूर की याद आती है तो सारे गम दूर हो जाते हैं, उनके मिसाल कोई कैसे ही रंग में हो, जब याद आ गए हैं सब गम बुझा। तो ये अंदाज है, इसके लिए मदरसे की जरूरत पड़ती, मदरसे में इसीलिए आते हैं, दिल में कुरान को सीखे और दिमाग में जो भूसा भरा हुआ है उसको निकाले और उसमें जो करामत की मोतियां हैं उसे चुने ताकि खुद साहिब करामत बन जाए। कुरान इसलिए फायदा नहीं देता है लोगों को कि खाली पढ़ते हैं, पढ़ने से फायदा सवाब जरूर मिल जाएगा, लेकिन उसके माना और मतालिक को सही अंदाज में जहालत के भूसे से अलग करके और चमकते हुए हिदायत के नूर को छूओगे तो हिदायत पा जाओगे, और सिर्फ सुन करके अपने का वहाँ पर मामला पेश करोगे गुमराह हो जाओगे। इसलिए कुरान फरमाता है इस कुरान को पढ़ करके बहुत से लोग गुमराह भी हो जाते हैं और इस कुरान को पढ़कर बहुत से लोग हिदायत पाते हैं, तो हिदायत कौन पाएगा और नुकसान किसको होगा? जो खेत में खाली जाके चलेगा न उसको गाड़ेगा न पीसेगा न रोटी बनाएगा, ये मेहनत नहीं करेंगे, जानवर की तरह दोनों हाथ जमीन पर रख दिया, पांव टेक दिया, भकर 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 खा रहा है तो उसको फायदा क्या होगा? मुंह भी छिल जाएगा, जबान में फिर खून निकलने लगेगा और पेट में जाएगा तो अल्सर हो जाएगा, ऐसा जुलाब होगा कि हॉस्पिटल में भी इलाज नहीं हो सकेगा। अरे अनाज फायदे के लिए है और आम फायदे के लिए है, अनाज को ढंग से खाओ मुफीद होगा और आम को मदद से भागो से पढ़ो तुम तो फायदा ही फायदा होगा, यहाँ भी होगा। मौलाना अब्दुल गनी साहब मरहूम, देखो हमने भी पढ़ा, हमने भी क्या हमने ही पढ़ा, मैं उनका अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद उल हूँ, शुरू से लेकर आखिर तक मैंने ही पढ़ाया, नहीं पढ़ा मैंने, मैंने पढ़ाया और मैंने ही पढ़ाया। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ उन्होंने की खूब इल्म को की दरासत की है, दर्श लिया है, मजाक नहीं किया है, सादा जिंदगी की, लेकिन पढ़ने में ऐसी मेहनत की, ऐसी मेहनत की कि मेरे शागिर्दों में तीन ही चार ऐसे थे जो इतने जहाँ पास और जहाँ फिशा थे पढ़ने में की बात है, उन्होंने इल्म को पीसा है, पीस पीस कर। अरे लोगों उनकी यादगार है, इसकी आदरू, इसका नाम, इसकी नामोस और इसकी इज्जत, इसकी हिफाजत सब नासिक वालों के जिम्मे। फिर मौलाना सैयद हाजी आसिफ इकबाल साहब के जिम्मे नहीं है, उनके उस्ताद मुफ्ती वाहिद अली साहब काजी शरा इन्हीं की सरपरस्ती की जिम्मेदारी नहीं है, इन सब की जिम्मेदारियाँ निगरानी सुपरविजन की है, सबसे बड़ी निगरानी आपकी, समझ गए। नानबाई जो है वो नान पकाता है, बिस्किट बनाता है, बेकरी वाला क्या करता है, सबके घर आ करके मुंह में डालता है, ये बच्चे खाते, उसका काम पका देना है, खिलाना तुम लोगों का काम है, लो और खिलाओ, मुँह चीर-चीर करके बेकरी वाला सबके घर जाकर के खिलाता नहीं है, इन्होंने बना दिया पका दिया और बेकरी बना दी, यहाँ से लेके जाओ किसके देखा था श्रीमान लेके जाओ, कुरान का बिस्किट लेकर जाओ और खिलाओ अपने बच्चों को, हम नहीं जाएंगे तुम्हारे, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारी, अगर अपनी जिम्मेदारी को समझोगे तो बिस्किट बासी नहीं होगा, ताजा ताजा फ्रेश खा लोगे और माशाल्लाह और मजबूत हो जाएंगे, अरे जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छा खाना खाओगे तो आज लड़के जिम जाते हैं, ये टर्न और इसको क्या करते हैं और इसको छाती उसके जर्सी और चेन और चलते हूँ बांका जवान, अरे ये बांके जवान जब पूरे हो गए तो ये सब ढीले ढाले हो जाएंगे, आओ जिम खाना, ये तो शाही मस्जिद में जिम खाना, दार्लूम गौसे आदम लड़कों का जिम खाना और ये लड़कियों का जिम खाना, दोनों को तंदुरुस्त बनाना है, खाली बदन को तंदुरुस्त मत बनाओ, आओ अपनी रूह को स्थान, इस जिम खाने से निकलोगे तो कब्र में भी डर नहीं लगेगा, पहलवान बन के जाओगे और मुनकर नकीर जब आएंगे, बिल्कुल मौत जब आएंगे रूह निकालने के लिए तो वो तो देखेंगे कि ये तो जिम खाने इसमें मुस्तफा से निकला, देख करके देखते रह जाएंगे और मरने वाला अपने बिस्तर पर मलकुल मौत कहेंगे अल्लाह, वो फरिश्ते जो वफात देने के लिए ऐसे पाकीज़ा लोगों के पास आएंगे, तो आते ही वो कहेंगे अस्सलाम अलैकुम, वाह वाह क्या बाका आलिम है, क्या शानदार आलिम है, मुस्तफा की मोहब्बत का कि धड़कन इसके सीने में, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाल की रोशनी इसके आंखों में, इबादत का नूर पेशानी में भटक रहा है, कुरान इसके सीने में है, हदीस मुस्तफा से रग रग इसकी मां की कसर। ऐसे ही हमारी माँ बहने जाएगी, उनका इल्म उनके साथ होगा। अरे हमारी माँ बहनों, तुम्हारी छातियों से जो दूर आलिमा बन के निकलेगा, तुम्हारे बच्चों के मुंह में जाएगा, वो कुरान और हदीस का नूर लेकर के
जाएगा।
बस मैं अपनी तहरीर खत्म करता हूँ, बहुत मेहनत कर ली है। मैं ये कहता हूँ कि ये जिम्मेदारी हम सब की मुश्तरका है, किसी की बहुत ज्यादा है, किसी की अहम है, किसी की बुलंद है। ये सारी जिम्मेदारियां जब ईमानदारी के साथ निभाई जाएंगी तो सारे मदरसे हमारे इंशाअल्लाह कामयाब रहेंगे। अब मैं नहीं बोल सकूंगा, इसलिए माजरत चाहता हूँ।